Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Aapka chehra khilava prasanna, to malum padta ha, ye abhi sukh bhog ke aaya hai. Sushtuhu kham इंद्रियाणी ऐसे अच्छा चेहरा अच्छा हो गया है, मतलब सुख भोग के आया। सुख का अर्थ यही है जिसका उपयोग करने से, उपभोग करने से आपकी इंद्रियां अच्छी हो जाए, सुंदर हो जाए, पुष्ट हो जाए, वो है सुख। सुखम शयिता, समझ गए कि नहीं? और सुख शब्द का दूसरा अर्थ है, ये थोड़ा आध्यात्मिक अर्थ है, सु माने शोभनम और ख शब्द का अर्थ आकाश भी होता है। सु शोभनम सुष्ठु खम आकाशम माने मनोरूप आकाशम एना सा सुखम, जिसका मनोरूप हृदय रूप आकाश सुष्ठु हो जाए उसको बोलते हैं सुख। आप जब खा पी लेते हैं, सुख का अनुभव करते हैं, तो आपका मन क्या हो जाता है? मनरूपी हृदय रूपी आकाश आपका बहुत बढ़िया हो जाता है, बहुत बढ़िया हो जाता है, इसीलिए उसको सुख बोलते हैं। लेकिन मैं एक प्रश्न आपको पूछता हूं, बढ़िया आकाश हो गया आप कब बोलते हैं? आकाश की शोभा कब होती है? आपको आकाश बहुत अच्छा कब लगता है? जब आकाश के ऊपर का बादलों का आवरण हट जाए, कोहरा हट जाए और आकाश बिल्कुल निरभ्र हो जाए, निरभ्र और खुला आकाश, आहा, फिर देखो आप आकाश को, बादल बीच में आ गए, कोहरा आ गया तो आपको आकाश दिखाई नहीं देगा, तो आकाश की शोभा कहां से होगी? आकाश में बिल्कुल बादल नहीं है, कोहरा नहीं है और अनंत आकाश हो गया, तारे टिमटिमा रहे हैं, चंद्रमा दिखाई दे रहे हैं, वाह वाह वाह, बड़ा आनंद आया। अब आकाश की शोभा बढ़ी, तो आकाश की शोभा खाली होने में है कि भरने में है? आकाश की शोभा भरने में नहीं है, उसके खाली होने में है। अब मैं आपको पूछता हूं, आपके हृदय की शोभा किससे है? फिर आपका हृदय भी तो आकाश है, आपका जो हृदय है वो हृदयाकाश, और उस हृदयाकाश की शोभा खाली होने में है कि भरने में है? ईमानदारी से, ईमानदारी से, आपके हृदय की जो शोभा है ना, वो भरने के बाद नहीं है, खाली होने। और आप सुख से कब सोओगे? और हृदयाकाश आपका भरा हुआ हो तब कि खाली हो तब? आपका हृदय बिल्कुल खाली हो, आपके हृदय में अब कोई चीज नहीं है, कहीं कोई आसक्ति नहीं, कहीं ममता नहीं, कोई छल नहीं, कपट नहीं, घृणा नहीं, ईर्ष्या नहीं, जलन नहीं, आपका हृदय रूपी आकाश क्या हो गया? अब बिल्कुल खाली हो गया है। आपका हृदय रूपी आकाश क्या हो गया? खाली। और ये खाली होना ही आपके हृदय रूपी आकाश की शोभा है। और आप जो साधना करते हैं ना, साधना का प्रयोजन भी यही है। आप जप कर रहे हैं, आप ध्यान कर रहे हैं, आप सत्संग कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप अपने हृदय को खाली कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, झाड़ू। आप जप कर रहे हैं तो आप हृदय को क्या कर रहे हैं? झाड़ू लगा रहे, खाली कर रहे। आप सत्संग में बैठे हैं और आपके मन का सारा कचरा आप हटा रहे, खाली हैं, बिल्कुल रिलैक्स, खाली। तो आप जब सुख में होते हैं तो उस समय आपका हृदय क्या हो जाता है? खाली हो जाता है। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, इसलिए यहां सुखम, आपका हृदय सु माने शोभनम खम आकाशम हृदय रूप आकाशम येन स सुखम। अब इसका एक दूसरा भाव है, आप जब सुख में होते हैं तो वास्तविक होता क्या है? आप उस समय खाली होते क्या भरे होते हैं? आप सुख में हैं तो आप भरे हैं कि खाली हैं? एक बात, आप सुख में नहीं हैं तो उस समय आप खाली हैं कि भरे हैं? भरे हैं। आप कोई चीज चाहते हैं, अभी आपको मिली नहीं है, मानो आप भूखे हैं, भूखे आप भोजन चाहते हैं और दो दिन से भूखे हैं, उस समय आपके मन को देखना, आप हृदय को देखना, उस समय आपका हृदय खाली है कि भरा है? आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। आप ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत गहरी बात है। आप भोजन चाह रहे हैं तो उस समय आपका मन भरा है, हृदय भरा है, आप चाह रहे हैं ना, ये मुझे चाहिए, भोजन चाहिए, भोजन चाहिए, भोजन चाहिए। आपका हृदय व्यस्त है, भरा पड़ा है, बिल्कुल कामना से, भूख से, इच्छा से, वासना से हमारा हृदय भर जाता है। और जैसे आपके सामने भोजन आ जाता है, बड़ी आश्चर्य की बात है, जैसे आप भूखे हैं और पंगत में बैठ के भोजन करना है आपको, पंगत में बैठ के, और वो बफेलो सिस्टम में नहीं है, बफेलो ही बोलते हैं ना सब। अच्छा, क्यों बुफे है क्या? अच्छा, महात्मा लोग तो बफेलो ही बोलते हैं उसको, सेम है। अच्छा, नहीं पहले हमको अंग्रेजी नहीं आते हैं, इसीलिए हम वो बुफे का मतलब बफेलो ही समझते थे, बाद में किसी ने समझाया कि नहीं नहीं बोले बुफे। हमको लगा सब मिलके खाते हैं, इसलिए इसका बफेलो सिस्टम है, झूठा नहीं कुछ नहीं सब। आपको पंगत में बैठ के खाना है, पंगत में, और थालियां नहीं है, परोसी जा रहे पत्तल, कभी खाए हो ऐसा? 150 लोग और भूख लगी हो, हा? और उस समय आप पत्तल के लिए कभी झगड़ा किए हो क्या? हा? कभी दोने के लिए झगड़ा किए देवेंद्र? नहीं किया, हमने किया है, छीना झपटी होती बचपन में, पत्तल हमको दो, हमको दो, हमको दो, दोना दो, यदि दोना नहीं मिला तो भागो भागो जाओ वहां से, छीना झपटी करके दोना। आदमी पत्तल के लिए भी झगड़ा करता, सही करता है झगड़ा, गलत नहीं, सही झगड़ा करता है। कोई बच्चा उठा और अपना दोना लेने के लिए गया, दूसरा के चट के बैठ गया, वहां बदमाशी करते हैं ना बच्चे, हम लोग बचपन में आ जाए, दूसरा आके बैठ गया, अरे बोल मेरी जगह, मेरी जगह, मेरी खींचा झपटी छाना सब कुछ। आप बहुत सभ्य हैं, दूसरे को भी खिलाते हो, इतने उदार भी हैं, समर्थ भी, लेकिन पंगत में अपने को दोना में धोने के लिए, पत्तल के लिए हम झगड़ा करते हैं, करते हैं। जब वहां परोसा जाता है तो ईमानदारी से दूसरे के पत्तल वाली पूड़ी ज्यादा अच्छी दिखती कि नहीं? जब पूड़ी परोसी जा रही है तो दूसरे के पत्तल वाली पूड़ी, ओहो वो तो ज्यादा पकी थी यार, ज्यादा पकी थी, ज्यादा सुंदर दिखाई देते हैं बहुत, वो उसका नंबर इधर नहीं आया। और जब आप भोजन कर चुके होते हैं, जब भोजन कर चुके होते तो क्या करते हो फिर उस पत्तल धोने का? अभी अभी जिस पत्तल धोने के लिए आप क्या कर रहे थे? झगड़ा कर रहे थे जबरदस्त। आज जैसे भोजन पूरा हो जाता है तो फिर उस पत्तल का, उस धोने का, उस कूलर का क्या करते हो फिर? अरे फोड़ते क्या उसको, तोड़ मरोड़ करके डब्बे में डाल देते। हाँ वो तो बहुत बड़ी सभ्यता की बात हुई, उठा के डब्बे में डालना, वो भी पत्तल का सम्मान हुआ। हाँ, जिस पत्तल पर आप भोजन कर रहे थे उसको यदि उठा के जहां उसको रखना चाहिए वहां आपने रख दिया तो आपने बहुत बड़ा उपकार किया उस पत्तल के ऊपर, बड़ा सभ्यता का व्यवहार किया, प्रत्युपकार हुआ। लेकिन आपको तो पत्तल भी याद नहीं रहता है, खाए और जहां क्या, बस वहीं त्यक्त। आखिर उस समय क्या हुआ? और जब आप भोजन कर रहे थे तो आपको आनंद आ रहा था कि नहीं? देखो होता क्या है, वहां प्रक्रिया क्या घटती है, वेदांत की प्रक्रिया की दृष्टि से मैं आपको समझा देता हूं। जब आपको भूख लगी थी ना, तो आपके मन में भूख थी, भूख, और जो भूख है उसका स्वभाव है कि आपके मन को चंचल कर देना। जो भी इच्छा है ये हमारे मन को चंचल कर देती है, चाहे पानी पीने की इच्छा हो, चाहे भोजन करने की इच्छा हो, चाहे मकान की इच्छा हो, चाहे कपड़े की इच्छा हो, चाहे भगवान की इच्छा हो। इच्छा यदि है तो वो इच्छा आपके मन को विचलित कर देती है, आपके मन को चंचल कर देती है, और मन की चंचलता ही दुख है, आप ध्यान देना। आपके मन में जब विषय की वासना निर्मित हो जाती है तो उस समय आपका मन व्यग्र हो जाता है, चंचल हो जाता है, व्याकुल हो जाता है, आपके इंद्रियों को जगा देता है वो। वासना हमारे इंद्रियों को जगा देती है, इच्छा हमारे इंद्रियों को जगा देती है। आपकी इंद्रियां सो रही हैं, आंख है बिल्कुल शांत है, कान है हाँ हाँ बिल्कुल, पेट, बाकी सारी इंद्रियां हैं, लेकिन ठीक है आराम से। लेकिन जैसे वासना निर्मित हो जाती है मन में, तो वासना क्या करती है, फिर हमारी इंद्रियों को जगा देती है। हाँ, और ये इंद्रिय जो है ना, इंद्रियां ये बड़ी मजेदार है, एक बार जगने तक ही आपके नियंत्रण में है, और एक बार जग जाती है तो गए काम से। फिर इंद्रिय जग गई हैं, वो इंद्रिय मतलब असुर है, असुर का जगना है, इंद्रिया जग गई, असुर जग गया, अब आपके मन की शांति खा जाएगा वो। अब आप कितना भी मन शांत हो ना, विचलित हो जाएगा। आप यहां सत्संग में बैठे और कोई गहरी इच्छा निर्मित हो जाए आपके मन में, आप सत्संग सुनेंगे, आप बार बार घड़ी देखेंगे कि यार टाइम क्या हुआ आज इतना लंबा, घर जाना है भैया, जल्दी जल्दी जाना है, वो चीज करना है, वो चीज करना है, खाना है, ये करना है, जाना है, आप बेचैन हो जाओगे। इच्छा हमारे इंद्रियों को जगाती है, और इंद्रियां जगने के बाद हमारे मन की शांति वो खा जाते हैं, हमारे मन का सुख वो खा जाते हैं, आप अशांत हो जाते हैं। हो गए अशांत, अब आप अशांत हो गए, दुखी हो गए, ये वेदांत का सिद्धांत है। विषय वासना हमारे मन की शांति खा जाता है, हमारे मन का सुख खा जाता है, विषय वासना खा जाती है, और आप बेचैन हो जाते हैं, मुझे वो चाहिए, मुझे आदमी चाहिए, मुझे भोजन चाहिए, मुझे मकान चाहिए, आप बेचैन हो गए। हाँ, और जब आपको भोजन मिल जाता है तो भोजन मिलने के बाद भोजन करता क्या है मालूम है? आपको जो सुख मिलता है ना, वो सुख भोजन से नहीं आता है, आपको सुख आता है आपके इच्छा के निवृत्ति से। आप जैसे ही भोजन आप देखते हैं ना, तो आप प्रसन्न हो जाते हैं, आपके शरीर में अभी भोजन ही नहीं गया, भूख तो आपके शरीर की है, भोजन तो बाहर रखा है, आपने तो देखा भर है, अभी पेट में गया ही नहीं, उतरा ही नहीं, तो आपको सुख कैसे होने लगा? वो आपकी इच्छा का सुख है, आपने चाहा था उसको, आपने चाहा था ये मुझे मिल जाए, और वो सामने जैसे आपके आया, हा हा हा, खुशी हुई, थोड़ी इच्छा, अब आपको लगा कि अब मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। वो जो सुख है ना, वो व्यक्ति का सुख नहीं है, वो आपके मन में आशा जग गई कि अब मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी, वो सुख है, समझ में आया? वस्तु के देखने का सुख नहीं है, अपितु आपके मन में आशा जग गई कि अब मेरी इच्छा पूरी होने वाली है, उस आशा की पूर्ति, उस आशा इच्छा की पूर्ति की आशा के कारण ही आपको क्या होता है, सुख होता है। लेकिन मान लो सामने वाले ने अंगूठा दिखा दिया, हा? आप बड़े खुश हो, आ आओ आओ भाई, ओ अब वेटर आया है, भूख लगी है, ओ लेकर के आया थाली, खुश हो गए, आओ आओ भैया रखो। उसने कहा तुम्हारे लिए नहीं है, तुम बैठो आधा घंटे, दूसरे के लिए, फिर क्या होगा? भोजन तो तुम्हारे सामने, आंखों के सामने, अब वो भोजन आपको सुख देगा क्या? नहीं देगा, क्योंकि वो आशा के अनुकूल नहीं था, अब आपकी इच्छा को पूर्ण करने की आशा आपकी खत्म हो गई, और फिर आप दुख में चले गए। तो आपको जो सुख होता है वो सुख वस्तु के दर्शन से जो सुख है, वो सुख वस्तु के दर्शन का नहीं है, वो वस्तु का दर्शन आपके मन में इच्छा की पूर्ति की आशा को जगा देता है। बस आपके मन में आशा जग जाती है, ओहो अब हमारी इच्छा वो सामने वाला पूरी करेगा, अब हमको भोजन मिलेगा, आशा जग गई। और वो आशा जगने के कारण आपको लगता है कि ओहो बड़ा सुख हुआ। आप भोजन के लिए बैठे हैं और भोजन में बैठ करके आप भोजन कर रहे हैं, क्या लगता है आपको जो आनंद आ रहा है वो भोजन का आनंद है? नहीं, पहली बात आपका जो दुख था भूख वो इच्छा जनित था। जो भी इच्छा है वो हमारे मन का दुख है, जो भी वासना है वो हमारे मन का दुख है। आपके मन में जैसी इच्छा जग जाती है वैसे आप दुखी होना शुरू हो जाते हैं, वैसे हमारे मन में चंचलता आनी शुरू हो जाती है, दुख का आना शुरू हो जाता है। आपके मन में बेचैनी, आपके मन में व्याकुलता बढ़ती जाती है। और जैसे आपके सामने भोजन आया, आपको बेचैनी थी ना अभी अभी, वो बस वहां वहां भोजन के न होने से नहीं, आपके मन में इच्छा का जागरण होने से। आपके मन में इच्छा का जागरण हुआ इसलिए दुख हो रहा था, भोजन नहीं था इसका दुख नहीं था, इच्छा का निर्माण हुआ इसका दुख था। तो 12 दिन तक अन्ना हजारे गुजार दिए, अपने सामने इतिहास है, और उनके सामने भोजन सब कुछ था, वहां लोग बढ़िया बढ़िया पूरी तल के खा रहे थे, लेकिन भोजन होना नहीं होना उनके लिए व्यर्थ था, इच्छा ही नहीं थी। आपके मन में इच्छा का जागरण हुआ, उस इच्छा ने आपके मन को व्यथित किया, उस वासना ने आपको इंद्रियों को जगा दिया, आप परेशान हो गए, आप दुखी हो गए, आप अशांत हो गए। और जैसे आपके सामने भोजन आ गया तो उस समय क्या होता है, अब आपके मन में विश्वास जग जाता है कि अब मेरे भीतर की इच्छा पूर्ण होने वाली है, और इसलिए आपको सुख का एहसास होने लगता है। वो वस्तु के दर्शन का नहीं है, अपितु आपके मन में इच्छा के निवृत्ति का एहसास जग गया, उसका वो सुख है। एक ग्रास आपने खाया, आपको आनंद आया, तो आपका वेदांत कहता है कि वो आनंद आपके भोजन का नहीं है, एक ग्रास इच्छा आपकी पूरी हो गई, बस बस ऐसा। आप वेदांत की दृष्टि से आप इसका श्रवण करेंगे तो वेदांत कहता है कि आपने एक ग्रास खाया तो आपको बड़ा आनंद आया, वो आनंद क्या है? बोले एक ग्रास इच्छा को पूर्ण करने का आनंद, इच्छा के निवृत्ति का आनंद है। आपने दो ग्रास खाया, जैसे जैसे आप खाते जाएंगे वैसे वैसे आपकी इच्छा निवृत्ति होती जाएगी, और जैसे जैसे इच्छा निवृत्ति होती वैसे वैसे आपको सुख का अनुभव होता जाएगा। वो सुखानुभव वो भोगजन्य नहीं है, अपितु इच्छा के निवृत्ति जन्य है। आपकी इच्छा की निवृत्ति हो रही है, आपने पूरा भोजन खाया और पूरा तृप्त हो गए। तृप्त हो गए का मतलब आप क्या बोलते हैं, बस बस मतलब आपके मन की सारी इच्छाएं पूरी हो गई। आपको जो सुखानुभव जो तृप्ति का अनुभव है वो भोजन का नहीं, उन्हें खाने का है, अभी तो आपकी इच्छाएं वहां क्या हो गई, पूर्ण। अच्छा मान लो आपने भोजन तो कर लिया है, पूरा 2-3 किलो खा गए, लेकिन आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई। जैसे आप भोजन के प्रारंभ में थे वैसे ही भोजन के अंत में भी है, मानसिक रूप से आप क्या करोगे? ऐसा हो सकता है कि नहीं? हाँ हाँ हो सकता है। मैं आपको एक उदाहरण बता देता हूं, जैसे कोई महात्मा थे हमारे साथी, नाम नहीं बताएंगे, उन्होंने मेरे पास एक फोन किया, बोले स्वामी जी आपके पास कोई भंडारी है क्या? तो मैंने कहा क्यों, कारण क्या है? अरे बोले मैं जहां भी जाता हूं, बोले पहला काम यही होता है कि वहां से भंडारी भाग जाता है। तो मैंने कहा भंडारी क्यों भाग जाता है, झगड़ा करते हैं? अरे बोले वो नहीं, बोले मैं 35 रोटी खाता हूं। और उस आश्रम में सबके लिए 35 रोटी बनती है, सबके लिए 35 रोटी बनती है, उसमें से भोजन होके कुछ बच भी जाती, और मुझे 35 रोटी चाहिए। और जब मैं वहां जाता हूं तो भंडारी को लगता है कि तो दुगना काम बढ़ गया, और उसको मालूम पड़ता है कि वो आने वाला है, तो बोले आता है 1-2 दिन में भाग जाता है, छुट्टी ले लेता है कोई भंडारी। मुझे लगा कि मजाक उड़ा रहे हैं, तो बाद में जब मैं मिला तो सही बात थी। उन्होंने कहा कि मैं 2-3-4 रोटी खाता हूं तो मुझे ऐसा लगता है नहीं कि मैंने कुछ खाया, और जब 35 रोटी उसको उनको मिलती है तो ओहो पेट भर गया। एक रोग भी होता है, आप कितना भी खाओ आपका पेट ही नहीं भरता है, आपको आपका पेट ही नहीं भरता है, आप खाते जाओ और आपकी इच्छा ही ना तृप्त हो तो आपको आनंद का अनुभव होगा क्या? फिर बेचैनी। आपकी इच्छा की निवृत्ति यदि ना हो भोग के बाद, तो वो आपकी इच्छा आपके इंद्रियों को जगाए रखेगी, आपकी इंद्रियों में बेचैनी पैदा करके रखेगी, आपके मन की आपके इंद्रियों की शांति वो खा जाएगी इच्छा वासना, और आप वैसा का वैसा अनुभव करेंगे जैसे भोजन के पहले थे वैसे भोजन के बाद। तो आपको जो आनंद का अनुभव है सुख का, वो क्या है? वो भोगजन्य है कि इच्छा की निवृत्ति जन्य है? आप बहुत गहराई से आप सोचते हैं तो हमको जो आनंद मिलता है वो आनंद भोगजन्य नहीं है। भोगने तो केवल आपकी इच्छा की निवृत्ति की, और इच्छा की निवृत्ति से आपको आनंद का अनुभव हुआ। यदि भोग आपके इच्छा के निवृत्ति में समर्थ नहीं है तो आपका वो भोग आपके सुख के प्रति साधन कभी बनेगा नहीं। हाँ, इसलिए ध्यान देना, हमारे जीवन का उद्देश्य भोग है कि इच्छा की निवृत्ति है? हमारे जीवन का उद्देश्य भोग नहीं है, हमारे जीवन का उद्देश्य इच्छा की निवृत्ति है। हम सारे दुनिया के पदार्थ चाहते हैं, हम बहुत धन चाहते हैं, हम मकान चाहते हैं, किसलिए? किसलिए भैया? चाह है ना, क्योंकि उसके बिना वो चाह मिटेगी नहीं, उसके बिना आपकी चाह मिटेगी नहीं। चाह मिटाना है, चाह तो पैदा हुई। आप चाह को मिटाने में समर्थ हैं कि चाह को पैदा करने में? थोड़ा सा अपना दिमाग चलाओ तो इसमें। आपकी स्वतंत्रता किसमें है? आपकी स्वतंत्रता चाह को मिटाने में है कि चाह को पैदा करने में है? आप बहुत गहराई से आप सोचेंगे ना, तो आपकी स्वतंत्रता चाह को पैदा करने में नहीं है। आप कभी भूख लगा सकते हैं क्या? आप कभी प्यास लगा सकते हैं क्या? आपके मन में जो प्रेम है ना, वही तो प्यास है। हाँ, और उसको आप कैसे पैदा करोगे? जैसे प्रेम है, मान लो प्रेम, आप अपने बच्चों से, पति से, पत्नी से, सास ससुर से, अपने गुरु से और भगवान से भी प्रेम करते हैं, तो वो प्रेम आपने पैदा किया है क्या? प्रेम होने की चीज है कि पैदा करने की चीज है? प्रेम होता है कि करते हैं हम? पक्का है ना, ये तो आपके अनुभव की चीज है। प्रेम होता है, प्रेम किया नहीं जाता है, और एक बार होता है तो उसके ऊपर कंट्रोल आपका होता है क्या? न प्रेम पैदा करने का सामर्थ्य हमारे में है, न स्वतंत्रता है, और न होने के बाद उसको वापस लेने का स्वातंत्र है। भूख लगने का स्वातंत्र नहीं है, न प्यास का स्वातंत्र है, न इच्छा का, न प्रेम स्वातंत्र नहीं है। इच्छा हो जाती है, क्या करोगे आप? भोजन करने का स्वातंत्र आप में है, आप में भोजन करने का स्वातंत्र है, आप कर लो भोजन। इच्छा हुई, अब क्या करोगे? हो गई, हाँ इच्छा हो गई तो क्या आपने पैदा की क्या? स्वाभाविक रूप से आपकी प्रकृति वह इच्छा को पैदा कर देती है, और उसके बाद आप भोजन करते हैं और आपकी भोजन से इच्छा की निवृत्ति हो जाती है। इसलिए ध्यान दीजिए, इच्छा पैदा होती है, हमारे जीवन को तहस नहस व्यथित कर देती है, हमारे भीतर के इंद्रियों को जगा के हमको व्यथित कर देती है वो इच्छाएं वासनाएं, फिर हमको भटकना पड़ता हो, इच्छा पैदा हुई अब क्या करो? भटको आप, इच्छा को मिटाने के लिए फिर भटकता है ना आदमी, दर दर भटकता है, यहां वहां वहां मिला साधन, और वो साधन क्या करता है? वो साधन आपकी इच्छा को निवृत्त कर देता है, और इच्छा की निवृत्ति का ही आनंद है वो, और कुछ नहीं है। इसलिए आपके जीवन का उद्देश्य भोग नहीं है, आपके जीवन का उद्देश्य इच्छा की निवृत्ति है। इच्छा पैदा हुई, आपकी आप पराधीन हो गए, आप मन में वासना पैदा हुई, आप पराधीन हो गए। अब उस पराधीनता को काटने के लिए आप क्या करते हैं? विषय भोग की तलाश में निकल पड़ते हैं, और वो विषय भोग फिर आपकी इच्छा को मिटाते हैं, और इच्छा को मिटाने के बाद आपको क्या लगता है? आहा हा, बहुत आनंद आया। जैसे आपके पैर में कांटा चुभा है, आप व्यथित हो गए, व्यथित हो गए, व्यथित हो गए, कोई आदमी मिला और उसने उसको कांटे को निकाल दिया, तो आप कैसा अनुभव करते हैं? आहा हा, कितना आराम हो गया वो आराम। तो आराम क्या है भैया? कांटा निकल जाने का आराम है, और क्या है? आपको जो आराम हुआ वो कांटा निकलने का आराम है, निकल जाने का आराम है। ऐसे इच्छा रूपी कांटा जब हमारे हृदय में गड़ जाता है तो हम परेशान हो जाते हैं और विषय क्या करते हैं, उस इच्छा रूपी कांटे को निकाल लेते हैं और उस समय आपको आनंद का अनुभव होता है, वो इच्छा की निवृत्ति का आनंद। इसलिए आपके जीवन का जो उद्देश्य है वो वस्तु भोग नहीं है, आप ही तो इच्छा की निवृत्ति है, समझ गए कि नहीं आप। और यहां पर भी नारायण आचार्य यम ने यही कहा, सुखम शहीता, सुख शब्द का अर्थ मैं आपको कह रहा था ना, सुख शब्द का अर्थ यही है, सु माने शोभनम और ख माने इंद्रियां, जिसकी इंद्रियां शोभन हो गई हैं, जिसका हृदय रूपी आकाश क्या हो गया है, शोभन हो गया, माने अब उसके हृदय में जो इच्छाएं हैं ना वो सारी खत्म हो गई, खाली हो गई, इच्छा हमारे हृदय को भर देती है। और इच्छा की जब निवृत्ति हो जाती है तो हमारा हृदय क्या होता है, खाली, और उसके बाद आनंद का अनुभव होता है। तो आपको जो आनंद का अनुभव है वो इच्छा की निवृत्ति का है, माने हृदय खाली होने का अनुभव है। आप कभी ध्यान देना, आप बिल्कुल खाली हैं, रिलैक्स हैं, ओहो बड़ा आनंद है, आपका हृदय उस समय खाली खाली जैसा लगता है। इसलिए इन्होंने कहा कि आप आपके पिताजी बिल्कुल निसंकल्प होंगे, निर्वासन होंगे और वो परम तत्व का अनुभव भी करेंगे, आप चिंता मत करो और तुम्हारे पिताजी सुखशेष होएंगे। हाँ, आचार्य यम ने बालक नचिकेता को कहा कि तुम्हारे पिता की नींद कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि एक वासनाएं तो हमारी नींद को तोड़ देती है ना, जागृति पर नियंत्रण नहीं हो पाता है तो हमारा नींद पर नियंत्रण नहीं हो पाता है। इसलिए उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिता की जागृति अच्छी बनेगी, हाँ, और उनका मन बिल्कुल खाली रहेगा आकाश की तरह, इच्छा की निवृत्ति होगी और वो आराम से सोते रहेंगे, चिंता मत करो और मैं तुमको भेज दूंगा पिता के यहां। ये आपका 11वां श्लोक है, कल का दिन एक बाकी है 31 तारीख, और कल इस दूसरे वर्ष तक हम पूरा करेंगे, फिर तीसरा वर्ष जो मांगेंगे तीसरे वर्ष में हम अगले साल की प्रतीक्षा करेंगे। अभी आप सीधे बैठ जाएं, एक माला हम जप करेंगे नित्य नियम के अनुसार। हरि ओम तत्सत्,
हरि
ओम तत्सत्,
हरि ओम तत्सत्,
हरि ओम तत्सत्,
हरि ओम।